छायावाद की भूमिका में तीसरा शीर्षक है एक कर दे पृथ्वी आकाश। छायावादी कवियों ने जो आत्माभिव्यक्ति की आकांक्षा प्रकट की वह वस्तुतः आत्मप्रसार की आकांक्षा थी। पुरानी दुनिया की सीमित चार दीवारी के भीतर उसका दम घुट रहा था। नए विज्ञान ने उसके सामने संसार का विराट रूप रख दिया। एक ओर नए देश परिचय की सीमा में आए और दूसरी ओर प्रकृति की विराटता का बोध हुआ। नई शिक्षा ने संसार और प्रकृति की व्यापकता के प्रति आधुनिक युवक के मन को उद्बुद्ध कर दिया। उसकी आंखें ज्ञान के इस आलोक से खुल गईं और खुलकर जैसे और बड़ी हो गईं। लोग पारिवारिक सीमाओं से बाहर निकलकर समाज के कर्म क्षेत्र में आ पड़े। अनेक युवक समुद्र पार न जाने की पुराण पंथी धारणा का खंडन करते हुए शिक्षा के लिए विदेशों में निकल पड़े। आत्मप्रसार की इस आकांक्षा में कवि की पहली टक्कर पुराने रूढ़ियों से हुई। पंचवटी प्रसंग में निराला के राम सीता को आत्मप्रसार का उपदेश देते हुए पारिवारिक सीमाओं की ओर संकेत करते हैं। छोटे से घर की लघु सीमा में बधे हैं क्षुद्र भाव, यह सच है प्रिय प्रेम का पयोनिधि तो उमड़ता है सदा है निहिसीम भू पर। घर की लघु सीमा में ही बधे रहने के कारण रीतिकाल के कवियों का सारा प्रेम संकीर्ण भावों और चेष्टाओं तक ही सीमित रह गया। यदि लला केल की रात से नहीं अघाए तो उन्होंने दिन में भी घात लगाई और पानी मांगने का बहाना ढूंढ निकाला। भाभी ने लला के मन का भाव ताड़ लिया और खुद पानी न ले जाकर दुल्हे को ही भेजा, लेकिन उसने लला को ऐसा छकाया कि देहरी पर ही पानी रखकर धीरे से चुपचाप लौट आई। यही हाल रीतिकाल के तमाम नायकों और नायिकाओं का है। घर के भीतर अथवा अरहर के खेत में या गोकुल वृंदावन के किसी कुंज के नाम पर अपने आसपास ही किसी सटे सहेट स्थल में उनकी सारी अभिसार लीलाएं चलती रहीं। आचार्य शुक्ल ने जब रीतिकालीन संकीर्णता का विरोध किया और चारपाई पर पड़े करहाने वाले प्रेम की भर्त्सना की तो उन्होंने आधुनिक युग की व्यापक भावना का ही परिचय दिया। इसके विपरीत उन्होंने जीवन के व्यापक कर्म क्षेत्र तथा प्रकृति के बीच प्रेम की प्रतिष्ठा करके आत्मप्रसार की नवीन मनोवृत्ति को ही शास्त्रीयता का दृढ़ आधार दिया। आत्मप्रसार की भावना ने केवल परिवार की चार दीवारी पर ही प्रहार नहीं किया, वस्तुतः अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में संकीर्णता का विरोध किया। घन का उद्बोधन करते हुए निराला कहते हैं, ताल ताल से रे सदियों के जकड़े हृदय कपाट, खोल दे कर कर कठिन प्रहार, आए अभ्यंतर संयत चरणों से नव्य विराट, करे दर्शन पाए आभार। कवि सदियों से जकड़े हुए हृदय कपाट को खोलकर नव्य विराट के आगमन की आकांक्षा कर रहा था। उसका हृदय हर तरह की संकीर्णता का विरोधी था। उसकी इच्छाएं थी कि एक कर दे पृथ्वी आकाश। उसकी विराटता संपूर्ण धरती से भी संतुष्ट नहीं थी। वह अपनी बाहों में एक ही साथ सारी धरती और अनंत आकाश बांध लेने का हौसला रखता था। छायावादी कवि हर तरह के जाति भेद और देश भेद के विरुद्ध था। इसलिए जब उसने सुना कि इंग्लैंड के सम्राट अष्टम एडवर्ड ने अमेरिका की एक सामान्य स्थिति की विधवा स्त्री के प्रेम के लिए सिंहासन छोड़ दिया तो केवल इसलिए उसका गौरव गान किया कि उसने धन के मान के जर्जर बांध पर प्रहार करके मानवता का संदेश सुनाया था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक भारतीय होने के नाते अंग्रेज सम्राट के प्रति अपने सहज विरोध भाव को दबाकर निराला ने उनकी प्रशंसा की। इससे कोई ज़्यादा समझदार आदमी चापलूस समझने का भ्रम न करे, इसलिए यहाँ भी संकेत कर दिया कि निराला ने सिंहासन चित सम्राट को सम्मान दिया था, सिंहासन आसीन सम्राट को नहीं। उन्होंने यह सब इसी धारणा से किया कि सम्राट ने 20वीं शताब्दी के मानवतावादी स्वर को सुनकर उनके अनुसार आचरण किया था। वे कहते हैं, 20वीं शताब्दी धन के मान के बांध को जर्जर कर महाअवधि ज्ञान का बहा जो भर गर्जन साहित्यिक स्वर, जो करे गंध मधु का वर्जन वह नहीं भ्रमर, मानव मानव से नहीं भिन्न निश्चय ही श्वेत कृष्ण अथवा वह नहीं क्लिन्न, भेद कर पंक निकलता कमल जो मानव का वह निष्कलन हो कोई स्वर। इसे हे सम्राट आपने सुना था। 20वीं शताब्दी के ज्ञान महाब्दी ने किस प्रकार पुरानी संकीर्णता को दूर कर मानसिक क्षितिज का विस्तार किया है, इसे काव्य के रूप में और अरूप नामक निबंध में अस्पष्ट स्वीकार करते हुए निराला कहते हैं, संसार की भौतिक सभ्यता से सब देशों के गुथ जाने के कारण संसार भर के लोग आत्मलाभ पहुंचा। फलस्वरूप कला में देश भाव की जो संकीर्णता थी, आदान प्रदान की सहृदयता ने उसे तोड़ दिया। कला की सृष्टि व्यापक विचारों से होने लगी और हर जाति की उत्तमता से प्रेम संबंध जोड़कर लोग उससे अपनी जातीय कला को प्रभावित करने लगे। पुरानी संकीर्णताओं में धार्मिक संकीर्णता भी एक है, जिसने मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास रोक रखा है। धर्म के ठेकेदारों ने भगवान को ही नहीं, भगवान के भक्तों को भी मंदिर की मजबूत दीवारों में कैद कर डाला। यह धर्म ही है जिसने दुनिया भर के लोगों से मिलने और मिलकर भाईचारा कायम करने पर रोक लगाई। इसके विपरीत विज्ञान ने मनुष्य को एक दूसरे के नज़दीक आने की भौतिक सुविधाएं दी तथा मानसिक विवेक दिया, इसलिए विज्ञान धर्म का विरोधी बनकर सामने आया। निराला इन दोनों की तुलना करते हुए कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी तो मंदिर के अहाते से बाहर भी नहीं निकल पाते, न हमारे ज्ञान से न हमारे अपने कर्मों द्वारा। निराला के अनुसार बंगला साहित्य ने जो आधुनिक युग में इतनी अधिक उन्नत की, वह इस नए विज्ञान और नई संस्कृति का ही परिणाम है। इसी व्यापक भावना के कारण रविन्द्रनाथ के चित्रों में विराटता के दर्शन होते हैं। इसलिए उन चित्रों का उदाहरण देकर निराला ने हिंदी में भी हृदय को दिगंत व्याप्त करने के विराट रूप स्वरूपों की प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वयं निराला भी जब तरंग से पूछते हैं कि किस अनंत का नीला अंचल हिला हिलाकर आती हो तुम सजी मडलाकर, और आज तुम्हारा किस विशाल वक्ष स्थल में अवसान, तो वे नदी के तरंग के माध्यम से अपने विशाल हृदय की तरंग को ही प्रकट करते हैं। विराट की आकांक्षा में अपने रूढ़िगत सीमाओं को तोड़ने का कितना साहस था, यह इसी से मालूम होता है कि छायावाद युग ने निर्झर अथवा प्रपात पर जितनी कविताएं लिखी उतनी शायद ही किसी और युग में लिखी गई हों। निर्झर छायावादी स्वच्छंदता का प्रतीक बन गया। वह शिला खंडों के गतिरोध को तोड़ता हुआ घन बन अंधकार को पार करके वेग से अनंत जल निधि की ओर चल देता है। शायद ही कोई छायावादी कवि हो जिसने निर्झर पर एक कविता न लिखी हो। निराला की इस स्वच्छंद वृत्ति ने अपने उस मित्र के साथ सहानुभूति प्रकट की, जिनके मन पर प्राचीन मुहर हृदय पर शिला थी और इसलिए वे नवीन कविताओं के रस से वंचित रह जाते थे। ऐसे ही जरा जीर्ण लोगों के विरुद्ध कवि का यौवन दुर्दुर्षकर्षमर्ष से लड़ा। पल्लव की भूमिका में पंत ने ब्रजभाषा का तो इतना उग्र विरोध किया, यह केवल भाषा का विरोध नहीं था, ब्रजभाषा के साथ ही वे ब्रजभाषा के रीति काव्य की तथा उसके समर्थक ऋण रक्षक पंडितों का विरोध कर रहे थे। वस्तुतः उस युग में जो ब्रजभाषा और खड़ी बोली का संघर्ष हुआ, वह प्राचीन संकीर्णता और आधुनिक विशालता का संघर्ष था। ब्रजभाषा के पुराने कवियों के विपरीत खड़ी बोली के छायावादी कवियों का वक्षस्थल इतना विशाल था कि उसमें पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्थ, जल स्थल, अनिल आकाश, ज्योति अंधकार, वन पर्वत, नदी घाटी, नहर खाड़ी, द्वीप उपनिवेश, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक का प्राकृतिक सौंदर्य, उष्ण शीत प्रधान देशों के वनस्पति, वृक्ष, पुष्प, पौधे, पशु पक्षी, विविध प्रदेशों की जलवायु, आचार व्यवहार, सब कुछ के काव्य में स्थान देने की आकांक्षा करता था और इसलिए वह ऐसी भाषा चाहता था जिसमें वात उत्पात, बाढ़, उल्का, भूकंप, मानव जाति की सभ्यता का उत्थान पतन, वृद्धि विनाश, आवर्तन विवर्तन, नूतन पुरातन, सब कुछ चित्रित हो सके और जिसके द्वारा दर्शन, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति, समाज नीति, कला कौशल, कथा कहानी, काव्य नाटक, सब कुछ रचा जा सके। पुराने वातावरण में स्वयं पंत का भी दम किस तरह घुट रहा था, यह पल्लव की उसी भूमिका में आगे के इन शब्दों से प्रकट है। हम इस ब्रज की जीर्ण शीर्ण छिद्रों से भरी पुरानी छीट की चोली को नहीं चाहते, इसकी संकीर्ण कारा में बंदी हो हमारी आत्मवायु की न्यूनता के कारण सिसक उठती है, हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। अतीत के प्रेमी प्रसाद में भी ऋणी मुक्त मन के आत्मविकास का आभास मिलता है। उन्होंने न तो निराला की तरह रूढ़ियों के विरुद्ध दुर्ष विद्रोह किया और न पंथ की तरह प्राचीनता जनित पीड़ा का स्पष्ट आभास दिया। फिर भी उन्होंने यथास्थान आधुनिक मानव के आत्म प्रसार का उल्लेख किया है। प्रसाद प्राचीन रूढ़ियों के विरोधी अवश्य थे, लेकिन ध्वस्त होते हुए प्राचीन के प्रति उनके मन में बड़ी ममता थी। महाप्रलय में देव सृष्टि के ध्वंस पर चिंता करते हुए मनु गोया प्रसाद के ही हृदय की व्यथा प्रकट करते हैं। गया सभी कुछ गया। एक ओर यदि वे अतीत की ममता छोड़ने में असमर्थ थे, तो दूसरी ओर आधुनिक मानव के वैज्ञानिक विकास से भी बहुत संतुष्ट नहीं थे। अपने इन सिद्धांतों के बावजूद वे मनु के विकास को लक्षित करते हैं, जो स्वयं कहता है, वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास, और जिसका गत्वर व्यक्तित्व अबाध गति मरुत सदृश है, और जो सकल अगजग को पार करता हुआ अपने वेग से आगे बढ़ रहा है कि उसके प्रतिपग में कंपन की तरंग उठ रही है। जिस तरह आधुनिक विज्ञान ने पुरुष को रूढ़ विद्रोह और आत्म विकास के लिए प्रेरित किया, उसी तरह नारी को भी। परंतु इस पुरुष प्रधान समाज में नारी के लिए संभव नहीं है कि खुले शब्दों में रूढ़ियों को चुनौती दे सके। नारी तो पुरुष से भी अधिक वंदनीय है। उसकी दुनिया तो कुछ तो और भी छोटी है। वह अपने घर की खिड़की से विस्मय के साथ संसार की गतिविधि देखती है। उसकी खिड़की के सामने जो कुछ आ जाता है उसे देख लेती है, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता कि लोग बाघ जो आ जा रहे हैं वह न जाने कहाँ से आ रहे हैं और न जाने कहाँ जा रहे हैं। नारी की इस स्थिति का चित्रण रविन्द्रनाथ ने खेया की एक कविता नई बहू में बड़े ही सांकेतिक ढंग से किया है। कवि पूछता है कि तुम आधी खुली खिड़की के किनारे खड़ी हो, नई बहू हो क्या? मैं सोच रहा हूँ कि इस आधी खुली खिड़की पर घूंघट की छाया से ढकी हुई तुम्हारी आंखों को यह विश्व कैसा दिख रहा होगा। निश्चय ही यह छायामय भुवन तुमने सपनों से गढ़ा होगा। शायद किसी नानी के मुंह से सुनी हुई परियों की कहानी के सांचे में वह ढला होगा, जिसे लोरियों की बनी कहानी का न आदि है न अंत है। मैं सोच रहा हूँ कि हठात यदि एक दिन बैसाख के महीने में आधी उठे और फिर उस आधी के झोंकों से तुम्हारे घर की सभी जंजीरें खुल जाएं और तुम्हारी आंखों पर गिरा हुआ घट भी उजड़ जाए, और फिर यह सारा जगत तीव्र विद्युत की हंसी हंस एक क्षण में शक्ति का वेश धारण करके तुम्हारे घर में घुस पड़े और आमने सामने खड़ा हो जाए, तो फिर कहाँ रहेगी यह आधे ढके हुए अलस दिवस की छाया, वह खिड़की वाली दृश्यवली और सपनों सनी अपनी कल्पना से गढ़ी हुई माया, तभी उड़ जाएंगे। सोचता हूँ कि उस समय तुम्हारे घूंघट रहित काली आंखों के कोने में न जाने किसका प्रकाश कांपेगा। अपने आप में खोए हुए प्राणों के आनंद में अच्छा और बुरा सब कुछ डूब जाएगा, और तुम्हारे वक्ष स्थल में रक्त की तरंगड़ी उत्ताल नर्तन में नाच उठेगी। फिर तुम्हारे शरीर में यह कंकड़ और किंकड़ी अपने चंचल कंपनों और कौन सा सुर बजा देगी। तुम्हारे रास्ते में आज जो आवागमन चल रहा है वह निरर्थक खेल सा लग रहा है। छोटे दिन के कामों की छोटी छोटी हंसियाँ और रुलाइयाँ न जाने कितनी उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, मन ही मन यही सोच रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो यह स्थिति है कि नारी जिस घर में वंदनी है उसमें कोई खिड़की भी नहीं है, न तो हवा के लिए और न प्रकाश के लिए। उसे तो अभी खिड़की भी खोलनी है। और संतोष की बात है कि नई शिक्षा ने मध्यवर्गीय घरों में भी प्रवेश किया। शिक्षा ने चारों ओर से बंद घरों में छोटी सी खिड़की खोल दी। कवि की जो आकांक्षा थी कि कोई आधी तूफान आकर उस खिड़की को भी तोड़ दे, वह तो न हो सका, लेकिन खिड़की जरूर खुल गई, भले ही वह उस पर्दा पर भी टांग दिया गया हो। स्वाभाविक है कि इस पर्देदार खिड़की से जो कुछ दिखे वह सब रहस्यमय मालूम हो। महादेवी ने प्राचीन सीमाओं के प्रति अपना जो असंतोष व्यक्त किया है और उसके साथ ही किसी उन्मुक्त तथा असीम आकाश में उड़ने की आकांक्षा प्रकट की, वह इसी रहस्यात्मकता के साथ। प्रतीक रहस्यात्मक है, भाषा अस्पष्ट है, फिर भी उनमें जो कुछ व्यंजित होता है वह वास्तविक है। रूप विधान आध्यात्मिक है, लेकिन विषय वस्तु सामाजिक है। सीमा और असीम सामाजिक सीमा और उससे मुक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन सामाजिक सीमाओं के पहरेदार इस प्रतीक को बेमतलब कहकर उनके असीम का मजाक उड़ाते थे। उन्हें अपनी चौकसी में ईमानदारी मालूम होती थी, लेकिन इन कवियों की असीम आकांक्षा में सच्चाई की कमी झलकती थी। इसलिए सीमाओं के पहरुओं ने आम पाठकों में यह धारणा फैलाने की कोशिश की कि इन रहस्यवादी कविताओं का संबंध तो शुद्ध जीव ब्रह्म से है, इस दुनिया में से उसका क्या संबंध है। इस तरह पुराने पंडितों ने नवीन रहस्यवादी कविताओं पर दोहरा आघात किया। पहले तो उन्हें एकदम पारलौकिक बताया, फिर उसे झूठ कहा। उस समय लोगों ने इस कथन की असंगति को ध्यान नहीं दिया। यदि वे कविताएं आध्यात्मिक भी हैं और साथ ही झूठी भी, तो इसका साफ मतलब है कि उनकी आध्यात्मिकता झूठी है, और यदि आध्यात्मिकता झूठी है तो उनमें जो सच है वह एकदम सामाजिक है। जो हो, कोमल कवियों ने उन दिनों यह तर्क नहीं किया। अपने ढंग से वे केवल इतना ही कहते रहे कि हमारा असीम और अनंत सपना नहीं सच है। तर्क से खंडन कोई भले ही कर ले, किंतु भाव जगत से वह एकदम अकाट्य है। यदि असीम से मिलने की बात अविश्वसनीय भी हो, तो उन आंसुओं को कैसे झुठलाया जा सकता है जो सीमाओं में बंद रहने के कारण बहे हैं, और कल्पना के पंख पर चढ़कर क्षण भर के लिए जो मुक्त जगत में उड़ आने की कारण ओठों पर हंसी खेल उठी है, उसे कोई देखे या न देखे, उसका कारण कोई बुझे या न बुझे, लेकिन उड़ने वाला वह मन तो जानता है। यह असीम उसी आत्मविस्तार का द्योतक है। इस सत्य को महादेवी जी ने अनेक गीतों में प्रकट किया है। सामाजिक सीमा से यह मन इतना घबरा उठा था कि फिर कल्पना लोक में किसी प्रकार की सीमा स्वीकार करने को तैयार न था। निराला के तुलसीदास की तरह उनके तुलसी राम भी इसी तरह रण में रावण से पराजित होकर विराट आकाश में उठते हैं, और वहां देखते हैं कि स्वयं शक्ति ही लांछन की तरह रावण को अंक में धारण करके उसकी रक्षा कर रही है। इसलिए वे भी गुजरते हैं हुए समुद्र की पीठिका पर खड़े लात गुलमों से ढके गिर शिखर को सिंह स्थित शक्ति का प्रतीक मानते हैं, और फिर शक्ति के इस भाव कल्पित विराट रूप की उपासना में लग जाते हैं। यहाँ भी विराट कल्पना में ही समस्या का असली रूप और उसका समाधान मिलता है। निराला की यह विराट शक्ति विवेकानंद की श्यामा की तरह मृत्यु रूपिणी भी है। विवेकानंद की कविता नाचुप तहाते श्यामा का अनुवाद करके निराला ने अपने ही हृदय की भावना प्रकट की। यह मृत्यु रूपिणी माँ वह पर आधारित है। प्राचीन रूढ़िग्रस्त उपासना दया याचना तथा कायरता का ध्वंस करने वाली है। यह मृत्यु पूजा निराश का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीर्ण रूढ़ियों की विंध्यवंशिनी आकांक्षा का प्रतीक है। कवि गरजता है, तुझे मुंड माला पहनाते फिर भय खाते तकते लोग, दयामयी कहकर चिल्लाते माँ दुनिया का देखा ढोंग। निराला की इस रौद्र और विराट रहस्य भावना के विपरीत पंथ की रहस्य भावना अज्ञात की लालसा के रूप में व्यक्त हुई है। कारण अस्पष्ट है कि निराला के आत्म विस्तार में व्यक्तित्व की विराटता की आकांक्षा थी, तो पंथ में ज्ञान के विस्तार के रूप में। पंथ सीमित ज्ञान की सीमा को तोड़कर प्रकृति और जगत के प्रति जिज्ञासु की तरह देखते हैं। नई शिक्षा ने युवक हृदय में संसार के प्रति जो कुतूहल उत्पन्न कर दिया था, पंथ ने उसी को रहस्यात्मक ढंग से अज्ञात की लालसा के रूप में व्यक्त किया। पंत ने उसी को रहस्यात्मक ढंग से अज्ञात की लालसा के रूप में व्यक्त किया। पंत का बाल मन हर चीज से सवाल पूछता है। सुबह सुबह गाती हुई चिड़िया को देखा तो उससे पूछ बैठा, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। रात में नक्षत्र माला दिखाई पड़ी तो कवि को लगा कि वे उसे निमंत्रण दे रहे हैं अथवा उनके द्वारा और कोई निमंत्रण दे रहा है। नए ज्ञान के कारण संपूर्ण प्रकृति से जो आंतरिक परिचय का अनुभव करता रहा होगा, उसी को इस तरह की जिज्ञासा हो सकती है। यहाँ यह न भूलना चाहिए कि छायावादी कवि अपने इस आत्मविकास के बारे में अधिक स्पष्ट नहीं थे, इसलिए जहाँ वे अपने असीम अज्ञात और विराट को प्रियतम के रूप में व्यक्त करते हैं, उस पर वे एक आवरण डाल देते हैं। यदि प्रसाद के यहाँ शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए, उनका ऐसा सोचना स्वाभाविक ही था। आने वाली दुनिया के बारे में उनकी जानकारी काफी धुंधली थी। प्राचीन मर्यादाओं से तो वे परिचित थे, किंतु बनने वाली नवीन मर्यादाओं की स्पष्ट जानकारी उन्हें न थी। नवीन समाज व्यवस्था उनके लिए अज्ञात ही नहीं अव्यक्त भी थी। इसी को महादेवी ने अव्यक्त पूर्णता और व्यक्त पूर्णता कहा है। प्राचीन व्यवस्था की अपूर्णता तो व्यक्त है, लेकिन नवीन की पूर्णता व्यक्त नहीं है। इसलिए इनके अनुसार अपनी व्यक्त पूर्णता को अव्यक्त पूर्णता में मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है। इसी बात को प्रायः खिड़की और आकाश के प्रतीकों से व्यक्त किया जाता है। और छायावादी कवियों ने जब उपनिषद के अहम ब्रह्मास्मि सूत्र को पुनर्जीवित किया तो उसका भी यही तात्पर्य था कि आधुनिक व्यक्ति अपने को अब विराट अनुभव करने लगा था। व्यक्ति को अपनी विराटता का बोध, यही व्यक्तिवाद है।